सर्प महाराज से विदा लेकर तारापरी और अमन जादुई झरने की ओर अपना सफर आरंभ किया। शीघ्र ही वे उस जादुई झरने के निकट पहुंच गए, किंतु जैसे ही वे झरने के समीप गए वहां तारापरी को कुछ अर्धजली आत्माएं दिखाई देने लगीं जो तारापरी की ओर चिल्ला रहे थे। तारापरी डरकर अमन से चिपक गई। अमन ने कहा, तपस्वी महाराज की शक्तियों के कारण तुम्हें आत्माएं दिखाई दे रही हैं। थोड़ी दूरी पर उनका जादुई छाता एक बड़े पेड़ पर अटक गया। वे दोनों समझते हैं कि इससे आगे छाता नहीं उड़ पाएगा। ये सोचकर वे पेड़ से उतरने की कोशिश में एक दूसरे के करीब आ गए। तब हल्की सी तूफानी हवाएं चलने लगीं जिससे वे दोनों हैरान हुए। एक दूसरे की मदद से वे पेड़ से नीचे उतर गए। तारापरी ने अमन से कहा, उसे ऐसा लग रहा है मानो कोई हवा उसे सामने दिख रहे रास्ते की ओर धकेल रही हो। अमन ने उसकी बात समझकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और वे दोनों उस रास्ते की ओर बढ़ गए। आगे जाकर बड़ी बड़ी रंग बिरंगी झाड़ियां देखकर अमन चौंक गया। उसके मन में आया, क्यों ना इन झाड़ियों को उखाड़कर फेंक दूं? किंतु जैसे ही वो झाड़ियां उखाड़ने के लिए आगे बढ़ा, हल्का सा उन झाड़ियों को छूते ही अमन का हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। तारापरी तुरंत उसके पास गई। अमन के हाथ से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। तारापरी ने अपने फ्रॉक का निचला हिस्सा फाड़कर एक पट्टी बनाई और अमन के हाथ पर बांध दिया। कुछ पल अमन ने उसे शुक्रगुजार निगाहों से देखा। पट्टी बांधते हुए तारापरी बोली, अमन सर, इन झाड़ियों के आगे मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुझे लगता है आगे कोई रास्ता नहीं है और इनकी वजह से आपको ज्यादा चोट भी लगी है। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए और किसी दूसरे रास्ते की तलाश करनी चाहिए जो हमें पानी के झरने तक ले जाए। जैसे ही तारापरी अमन का हाथ पकड़कर वापस मुड़ी, एक जोरदार आंधी आई जो उसे फिर से उन्हीं झाड़ियों की ओर धकेलने लगी। तारापरी हैरानी से बुरा हाल थी। अमन ने भी आंधी का झोंका देखा था। उसने तारापरी से कहा, मिस तारा, मुझे लगता है ये हवा हमें कहीं और नहीं जाने देगी, लेकिन अब क्या करें, आगे तो कोई रास्ता भी नहीं है। तारापरी फिर से झाड़ियों की ओर खिंचाव महसूस करने लगी और वो गिरने ही वाली थी कि अमन ने उसका हाथ थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। चूंकि अमन के हाथ तारापरी की कमर पर थे, सो उसे जो खिंचाव महसूस हो रहा था वो अचानक अमन को भी महसूस होने लगा। उसने एक हाथ से तारापरी का हाथ पकड़ लिया और उन झाड़ियों की ओर जाने लगा। जैसे ही तारापरी उन रंग बिरंगी नुकीली झाड़ियों के सामने खड़ी हुई और उसने अपना एक हाथ उन्हें छूने के लिए उठाया, अमन ने उसे रोक दिया और कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने अभी मेरे हाथ की हालत देखी है जो इन झाड़ियों की वजह से हुई है, और तुम भी यही गलती करने जा रही हो। तारापरी बोली, आपको इसके अलावा कोई और विकल्प दिखाई दे रहा है? नहीं ना, अब आप मुझे इन्हें छूने दीजिए। हो सकता है कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मेरे पास तपस्वी महाराज की शक्तियां हैं। अमन बोला, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? तारापरी बोली, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे हाथों पर भी आपके हाथों जैसे जख्म हो जाएंगे। डोंट वरी अमन सर, अगर जख्म हो भी गए तो हम लोग घर जाकर डॉक्टर को दिखा लेंगे। तारापरी ने डॉक्टर शब्द इसलिए प्रयोग किया ताकि अमन को उस पर कोई शक ना हो। तारापरी ने फिर अपना हाथ उस झाड़ी की ओर उठाया और हल्के से छूते ही वहां की धरती पर कंपन होने लगा। वे सारी रंग बिरंगी झाड़ियां एकदम से रोशन हो उठीं। सब कुछ बेहद आकर्षक लग रहा था और एक साथ जलकर सारी की सारी एक दरवाजे की भांति हटती चली गईं, मानो कोई दरवाजा खुल गया हो। तारापरी की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था और अमन शौक में था। वो एक नज़र जगमगाती हुई झाड़ियों को देखता तो एक नज़र तारापरी को देखता। फिर तारापरी ने अमन का हाथ पकड़ा और जो रास्ता झाड़ियों की वजह से बना था वे दोनों उसके अंदर चले गए। जैसे ही वे दोनों झाड़ियों को पार करके अंदर गए तो वे हैरान रह गए। वो एक खूबसूरत बगीचे जैसा था, जहाँ एक बेहद खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ और इसके नीचे से बहता हुआ एकदम सफ़ेद मोतियों सा पानी और जगह जगह खूबसूरत रंग बिरंगे पंछी थे। उस खूबसूरत जगह को देखकर तारापरी चहक उठी और अपनी खुशी रोक नहीं पाई। वो चिल्लाकर बोली, अमन सर, वो देखिए रंग बिरंगे पंछी, और अमन सर, वो देखिए रंग बिरंगे खूबसूरत जानवर और अपने पंख फैलाए हुए मोर, और उधर देखिए उस पहाड़ी के पास से बहता पानी, ये सब कितना खूबसूरत है ना। ऐसा कहकर उसने अमन का हाथ कसकर पकड़ लिया और अचानक अमन कराह उठा, क्योंकि तारापरी ने भाव में आकर अमन का चोट वाला हाथ पकड़ लिया था। अमन का कराहना सुनकर तारापरी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। वो जल्दी से अपना हाथ हटाकर सॉरी बोलने लगी। अमन उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा और बोला, मिस तारा, आप अपना बचपना बंद कीजिए और ये ढूंढिए कि वो बूढ़ी माँ कहाँ है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो नहीं जाने मैं क्या कर बैठूंगा। ये कहते हुए अमन की आंखों के किनारे भीग गए। अमन के दुख को साफ देखा जा सकता था। तारापरी भी थोड़ी सीरियस हो गई और बोली, हाँ अमन सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ की खूबसूरती में इतना खो गई थी कि मुझे किसी बात का कुछ ख्याल ही नहीं रहा था। चलिए बूढ़ी माँ को ढूंढते हैं। फिर बोली, अमन सर, आप उस ओर देखिए और मैं इस ओर देखती हूँ, दोनों अलग अलग दिशाओं में ढूंढेंगे तो जल्दी कामयाबी मिलेगी। अमन बोला, ठीक है। ऐसा कहकर अमन अलग दिशा में चला गया और तारापरी अलग दिशा में चली गई। काफी देर तक दोनों अपनी अपनी दिशाओं में खोजबीन करते रहे, किंतु पूरे घंटे भर खोजने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला और दोनों थककर वहीं आ पहुंचे। तारापरी ने अमन से पूछा, सर उस ओर कोई मिला आपको? अमन बोला, नहीं कोई भी नहीं मिला। और तुम्हें? तारापरी बोली, नहीं अमन सर उस ओर भी कोई नहीं है। फिर बोली, अब क्या करें अमन सर, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन कहीं भी बूढ़ी माँ नहीं मिली और इस खोजबीन में मेरा गला भी सूख गया है, मुझे पानी पीना है। अमन ने हाँ में सिर हिलाया और वे दोनों उस सफेद पहाड़ के नीचे से बह रहे पानी के पास गए। पास जाकर जैसे ही उन्होंने उस पानी को देखा तो वे दोनों बेहद शौक हो गए, क्योंकि वो पानी वाकई बेहद खूबसूरत था, जो एकदम सफेद रंग का था। ऐसा लग रहा था कि इस पानी को बैठकर पूरे दिन रात देखा जाए तो भी आंखों की ठंडक पूरी ना हो। तारापरी ने अमन से कहा, अमन सर पहले हम लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम कहीं और बूढ़ी माँ की खोज करेंगे। तारापरी ने पानी में हाथ डाला और दोनों हाथों की प्याली बनाकर पानी पीने लगी। वो काफी देर तक पानी पीती रही। अमन चिढ़ गया और बोला, मिस तारा क्या आपने कभी पानी नहीं पिया है क्या? आप कितनी देर से पानी पी रही हैं? आपको इतनी प्यास कैसे लगी है? अमन की बात सुनकर तारापरी ने पानी पीना बंद किया और अमन के सामने खड़ी होकर बोली, अमन सर ये पानी नहीं अमृत है। अमृत एक बार पीना शुरू करो तो मन ही नहीं कर रहा है कि पीना बंद करूं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद पानी पीकर देख सकते हैं। तारापरी की बात सुनकर अमन को यकीन नहीं हुआ और सच जानने के लिए वो पानी के पास बैठा और उसने भी अपने दोनों हाथ पानी में डाले। अमन हैरान रह गया। जैसे ही उसने अपने हाथ पानी में डाले उसका पूरा जख्मी हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अमन ने पानी पीना शुरू किया। वाकई वो पानी शहद जैसा मीठा था। वो भी वही कर रहा था जो तारापरी कर रही थी, सो वो झेप गया और तारापरी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, वाकई तुम सच कह रही थी, ये पानी वाकई बहुत ही ज्यादा मीठा और नायाब पानी है। और ये देखो इस पानी में हाथ डालते ही मेरा पूरा घाव भी ठीक हो चुका है। ये सुनकर तारापरी अमन का घाव वाला हाथ अपने हाथों से छूकर देखने लगी और खुश होकर बोली, हाँ अमन सर वाकई यह पानी तो नायाब पानी है।
तब अमन बोला, लेकिन अब हम लोग कहाँ जाएं और उस बूढ़ी माँ को कहाँ ढूंढे? तब अचानक तारापरी के दिमाग में एक विचार आया और वो पानी के पास बैठकर कहने लगी, बूढ़ी माँ कहाँ है आप? बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, सरस्वती। जैसे ही पानी के पास बैठकर तारापरी ने तीन बार बूढ़ी माँ को पुकारा, उस नायाब पानी में जोरदार उबाल आने लगा। तारापरी डर के मारे अमन के पास जाकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते उस सफेद पहाड़ के नीचे वो उबाल आकर थम गया और अमन और तारापरी ये करिश्मा देखकर बुरी तरह से चौंक गए, क्योंकि उबाल के जाने के बाद बूढ़ी माँ ढेर सारी रोटियों के साथ दिखाई देने लगी, जो पहाड़ी के नीचे से जा रहे पानी से रोटियां सेक रही थीं। अमन और तारापरी एक दूसरे को बार बार हैरानी से देख रहे थे।